शांति। कल आपने विभिन्न सत्रों में राजयोग का अभ्यास किया, तो राजयोग अभ्यास करना आपको सहज लगा या कठिन लगा? क्या कहेंगे, सहज था या कठिन था? जो समझते हैं सहज लगा वो हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें। तो सचमुच ये सहज राजयोग है, इसे एक बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि ये परमात्मा की स्नेह भरी मधुर याद है। जैसे अभी आपने सुना, परमात्मा से हमारा परिचय होना आवश्यक है। जहाँ परिचय और संबंध होता है वहाँ याद करना मुश्किल नहीं होता है, और संबंध में स्नेह होता है, स्नेह में तो याद अपने आप आती है। और इसीलिए राजयोग का अभ्यास कोई भी कर सकता है। आपने ये भी समझा कि राजयोग सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति परमात्मा के साथ संबंध है, जिसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं, जो सभी धर्मों में मान्य स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप, वो सर्वोच्च स्वरूप है। तो हम राजयोग में परमात्मा को ज्योति बिंदु रूप से याद करते हैं। वो सभी शिक्षकों का शिक्षक है और सभी गुरुओं का गुरु है, उसका स्वयं का माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है, इसीलिए वो सर्वोच्च शक्ति है। राजयोग अभ्यास हमें कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये हमें स्वयं का राजा बनाता है। सामान्यतः हमारा कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं होता, हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी मन कर्मेंद्रियों के वश होकर चलता है। जो देखा उस पर मन सोचने लगता है, जो सुना उसका प्रभाव मन पर होता है, जो बोल दिया मुख से कैसे भी वचन निकल जाते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों पर अधिकार होना अर्थात जो हमें दिखना चाहिए वही हम देखते हैं, जो हमें सुनना चाहिए वही हम सुनते हैं, और जो वचन हमारे मुख से निकलने चाहिए वही वचन हम बोलते हैं। और जब हम स्वयं के राजा बनते हैं तो फिर प्रारब्ध के रूप में भविष्य जन्मों में राज्यों की प्रारब्ध होती है, राजाओं का राजा बनना, यानी मनुष्य देवता बन जाता है, उसके संस्कार दिव्य हो जाते हैं। जो आज के राजाएं हैं वो भी देवताओं की पूजा करते हैं, इसीलिए कहा राजाओं के राजा बनते हैं। और ये राजयोग हम तब अभ्यास करते हैं जब हम इसमें समाये हुए राजों को समझ जाते हैं। तो हमने आत्मा के राज को समझा, परमात्मा के राज को समझा, इस सृष्टि चक्र के राज को भी आप समझेंगे। तो ये राज समझने के बाद राजयोग का अभ्यास करना सहज हो जाता है। राजयोग एक चार्जर की तरह है, जैसे चार्जर से हम अपने मोबाइल सेट को पावर सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज कर लेते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो कितना भी महंगा आपका मोबाइल सेट हो लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही इस संसार में जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हुए आत्मा की बैटरी है ना, या आत्मा की शक्तियां डिस्चार्ज होती जाती हैं, और जब वो अंतिम समय तक पहुंचती है तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के हमें पुनः ये सहज राजयोग सिखाते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, यानी संबंध का अनुभव करते हैं, और हमारी आत्मा रूपी बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। बैटरी डिस्चार्ज होती है, विज्ञान कहता है कि वो इसीलिए डिस्चार्ज होती है क्योंकि उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो यहां भी जब आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हमारे मन वचन कर्म सब अव्यवस्थित होते हैं, यानी हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और करते कुछ और है। मन वचन कर्म एक दिशा में नहीं रह पाते हैं, लेकिन जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है तो फिर हमारे मन वचन कर्म ऑर्गेनाइज होते हैं। तो बैटरी चार्ज होना माना केमिकल कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो हमारे जीवन भी संयमित होने लगता है, अनुशासित होने लगता है। ऐसे ही राजयोग एक बांध की तरह है। जैसे हम बांध बनाते हैं तो हम पानी का संचय करते हैं, क्योंकि पानी का संचय करके उसका सदुपयोग किया जा सकता है, उससे अनेक नहरें निकाली जाती हैं जिससे खेती की सिंचाई हो सके, उससे पाइपलाइन डाली जाती है ताकि पीने का पानी मिल सके, और अगर बहुत अधिक पानी होता है तो फिर उसमें कुछ जनरेटर्स लगाए जाते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है। तो पानी का सृजनात्मक प्रयोग होता है। अगर उस जल को संचय नहीं किया गया, बांध नहीं बनाया गया, तो कई बार अधिक पानी होने से बाढ़ भी आ सकती है, और वो बाढ़ विनाशकारी होती है, जीवन समाप्त कर देती है, खेती समाप्त कर देती है। तो ऐसे ही जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन की शक्तियों का संचय होने लगता है, और मन की शक्तियों को दिशा मिलती है। जैसे बांध से हम पानी को दिशा देते हैं तो वो सही स्थान पर सही रूप से प्रयोग होता है और जीवन दान देता है। तो ऐसे ही मन के विचारों को जब सही दिशा मिलती है तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और हमारा ये जीवन सिद्ध होता है। लेकिन यदि मन को दिशा नहीं दी गई तो यही मन हमारे जीवन के लिए क्या कहेंगे, बर्बादी भी ला सकता है, क्योंकि मन कई बार ऐसे ऐसे विचार करता है जो सचमुच मनुष्य को दिशाहीन बना देते हैं, उसके जीवन को भटका देते हैं। तो राजयोग के अभ्यास से हमें ये विशेष अनुभव होते हैं, विशेष प्राप्तियां होती हैं। राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, ये किसी महात्मा या गुरु के द्वारा सिखाया हुआ योग नहीं है। और इसीलिए भारत में जितने भी योग किए जाते हैं सभी योगों का फल हमें राजयोग का अभ्यास करने से मिलता है। भारत में करीब 6-7 प्रकार के योग किए जाते हैं, आप देख रहे हैं, ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, समत्व योग, संन्यास योग, हठ योग आदि आदि। तो राजयोग ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। राजयोग में हम समझ से अभ्यास करते हैं, हमें ये समझ मिलती है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा कौन है, वो किस रूप वाले हैं, परमात्मा से संबंध का अनुभव कैसे करें, उनसे प्राप्ति क्या होगी, ये अंधश्रद्धा नहीं है। इसीलिए राजयोग में कोई कर्म कांड हम नहीं करते हैं। आप देखेंगे कोई पूजा पाठ या कोई विधि नहीं की जाती है, क्योंकि ये ज्ञान योग है। राजयोग बुद्धि योग भी है, क्योंकि हम ईश्वर में मन बुद्धि लगाते हैं, उसके द्वारा हम परमात्मा का अनुभव करते हैं, उसकी प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। इस संसार में भी हम इस विधि के अनुभवी हैं, जिसको हम कहेंगे अदृश्य माध्यम से हम परमात्मा से संबंध स्थापित करते हैं। जब हम मन से ईश्वर को याद करते हैं तो कुछ दिखाई देने वाला संबंध तो नहीं है, ना ही आत्मा और परमात्मा हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी मन वो माध्यम है, जो विचार तरंगे मन से उत्पन्न होती हैं वो परमात्मा तक पहुंचती हैं। मोबाइल सेट में हम बात करते हैं, आज विज्ञान ने ऐसे साधन दिए हैं कि हम सहज इसको समझ सकते हैं। तो मोबाइल के द्वारा हम संसार के किसी भी दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हैं, हमें बहुत कम समय में या लगभग नहीं के बराबर समय में तुरंत उनकी आवाज भी सुनाई दे जाती है। देखने का तो कोई संबंध नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मोबाइल सेट से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, जो ट्रांसमीटर से होते हुए उनके सेट तक पहुंचते हैं और फिर हमारे सेट तक आते हैं। हम माइक से बात करते हैं तो साउंड वेव्स बनती हैं, ध्वनि तरंगे बनती हैं, जो यहां से होती हुई आपके कान से टकराती हैं और तब आप सुन पाते हैं। लेकिन ध्वनि तरंगों को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन सुन रहे हैं। तो ऐसे ही जब मन विचार करता है, जिसके बारे में भी विचार करता है, कभी किसी मनुष्य के बारे में भी हम बहुत सोच रहे होते हैं, तो उसको भी वो अनुभव होता है, वो भी हमें याद करने लगते हैं। इसको टेलीपैथी कहते हैं, यानी आत्मा का आत्मा के से संबंध होता है मन के माध्यम से। ऐसे ही आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध भी विचारों के माध्यम से होता है, और बुद्धि उसका चित्र निर्माण करती है। तो ये मन बुद्धि का योग है। ऐसे भक्ति में भी हम अनुभवी हैं, जब हम भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होते हैं तो हमें पता होता है कि मूर्ति तो नहीं सुन रही है, मूर्ति जड़ है, लेकिन फिर भी हम अपने मन की बातें ईश्वर के सामने कहते हैं। हम समझते हैं कि भगवान जहां भी है वो मेरे मन की बात सुनेगा, और जब वो हमारी भावनाएं पूरी हो जाती हैं तब हम क्या कहते हैं, भगवान ने मेरी सुन ली। तो कैसे सुने, जरूर मन के माध्यम से सुनी, आपके मन की आवाज वो ईश्वर तक पहुंची। लेकिन जो हम भक्ति करते हैं उसमें हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। हम कोई भी स्तुति करते हैं या कोई भी पाठ करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं, और वो करके हम समझते हैं हमारा कर्तव्य भगवान के प्रति पूरा हो गया। हम सभी अपनी अपनी विधि से पूजा पाठ जरूर करते हैं, भगवान को याद करते हैं। घर में ही हमने एक स्थान बनाया होता है तो नियम पूर्वक, अगर हमने नियम बनाया है कि मुझे दीपक जलाना है तो हम दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, और जो भी भगवान हमें प्रिय हैं वो सभी भगवान, सभी देवताओं के चित्र हम रखेंगे, और सभी को हम दीपक दिखाएंगे। कई बार हमें भय होता है कि अगर हमने इस भगवान को याद नहीं किया तो कहीं ये हमसे नाराज ना हो जाए, तो भय से भी भक्ति होती है। लेकिन राजयोग में हम भय से परमात्मा को याद नहीं करते, प्रेम से परमात्मा को याद करते हैं वो प्रेम तुरंत ईश्वर तक पहुंचता है, हमारे भावों को पहुंचा देता है। तो राजयोग इज टू वे कम्युनिकेशन, नॉट वन वे कम्युनिकेशन कि सिर्फ हमने अपनी विधि पूरी की और काम पूरा हो गया, लेकिन हम कहते भी हैं और ईश्वर को सुनते भी हैं, यानी उनसे हम प्राप्ति भी करते हैं, उनसे शक्तियां ग्रहण करते हैं, उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। और ये साइलेंट कम्युनिकेशन है, साइलेंट है यानी भक्ति में हम करते हैं, हम मुख से जरूर वर्णन करेंगे, जो भी हम पाठ करेंगे, मंत्र जपेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो जरूर हम मुख से बोल कर करते हैं, साइलेंट नहीं करते। लेकिन राजयोग में हम साइलेंट करते हैं, साइलेंस इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे कहा जाता है। कभी कभी दो मनुष्यों के बीच में भी साइलेंस में ही वार्तालाप हो जाता है, भावों का आदान प्रदान हो जाता है, खासकर जब आपस में बहुत स्नेह होता है तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। तो राजयोग में भी ईश्वर के साथ हम इस तरह से संबंध मन के माध्यम से अनुभव करते हैं। फिर राजयोग कर्म योग भी है, आपने कल सुना विधि में राजयोग की आधार विधि आपको बताई गई, तो आपने सुना कि राजयोग कर्म योग है, हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो हमारे दैनिक कर्म है, इन कर्मों को करते हुए भी हम योग का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मन को ईश्वर में लगाना है, इसके लिए हमें कोई कठिन क्रिया करने की जरूरत नहीं है, कोई आसन लगाकर बैठेंगे, आंख बंद करके बैठ करके भगवान को याद करेंगे तभी हम उसे याद कर सकते हैं, नहीं। जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, एक पति अपनी पत्नी को, हाँ एक बहन अपने भाई को, तो हम उसके लिए कोई आसन नहीं लगाते हैं, हाँ, या उसके लिए हम आंखें बंद नहीं करते हैं, सहज याद होती है, हाँ, हमें उनकी कुछ बातें याद आती हैं और उस आधार पर हम उनको याद करते हैं। तो इसी तरह हम जो भी कर्म कर रहे होते हैं हम उनके बहुत अभ्यस्त होते हैं, हमें उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। मानो आप भोजन बनाते हैं या घर के और काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सारा समय बुद्धि उस काम में नहीं होती है, तो बीच बीच में हम मन बुद्धि को ईश्वर की ओर भी ले जा सकते हैं। भगवान हमसे एक संकल्प की दूरी पर है, हमने मन में ये विचार लाया कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, वो मेरा पता है और ये मेरा योग भगवान के साथ लगा, सिर्फ एक ये विचार ही मन को ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए काफी है। तो इसीलिए जब हम कोई भी कर्म करते हुए भगवान को याद करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है, यानी उस कर्म के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ जाती हैं। वो कर्म साधारण कर्म नहीं रहता है, भले ही देखने में साधारण कर्म है, हम कहीं जा रहे हैं एक साधारण कर्म है, लेकिन जाते हुए यदि मैंने भगवान को याद किया तो वो कर्म सत्कर्म हो जाते हैं, और सत्कर्म एक का पदम गुना फल देने वाले होते हैं। सामान्यतः हम एक कर्म करते हैं तो हमें एक का एक ही फल मिलता है, लेकिन ईश्वर की याद में किए गए कर्म पदम गुना फल देने वाले होते हैं। ये जैसे हम आम का बीज बोते हैं, आम का बीज बोते हैं तो हमें थोड़ा फल के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब वो फल देने लगता है तो हम ही नहीं लेकिन पीढ़ियां भी उस फल को खाती हैं, इतना फल जो अनगिनत होता है। तो राजयोग का अभ्यास हमें वर्तमान में तो खुशी शक्ति शांति का अनुभव कराता ही है, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए ये प्रारब्ध ये भाग्य आत्मा अपने साथ ले जाती है, वो संचित भी होता है। तो ये कर्म योग का महत्व है, और इसीलिए गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमें समय नहीं मिलता। हाँ, कई बार हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि बहन जी हम इतने व्यस्त हैं कि ज्ञान योग के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन अपने दैनिक कर्म तो हम सभी करते हैं। हाँ, भोजन तो हम अवश्य करेंगे, चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो। अगर हमें किसी कार्य के लिए जाना है तो हम अवश्य जाएंगे, चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो। तो उस समय भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो समय नहीं है, ये भी बहाना इसमें समाप्त हो जाता है। तो राजयोग कर्म योग है, राजयोग भक्ति योग है। भक्ति माना ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का भाव। तो राजयोग में परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण का भाव होता है। हम संबंध से ईश्वर को याद करते हैं, जैसे कल आपने समझा, भगवान से हमारे सर्व संबंध हैं। हम उन्हें कहते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सभी साथी सहारे, सब हम उनको बोलते हैं। या तुम माता पिता स्वामी सहायक बंधु सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, ऐसे भी हम गाते हैं। तो भगवान के लिए हम सर्व संबंधों का गायन करते हैं आज तक, लेकिन अनुभव नहीं करते वो कैसे हमारा माता पिता है, वो कैसे हमारा मित्र है, वो कैसे हमारा गुरु है, वो कैसे हमारा शिक्षक है। वो अनुभव नहीं किया, सिर्फ जाना। भक्ति में सिर्फ हम ये जानते रहे कि वो है, लेकिन राजयोग में हम अनुभव करते हैं और उस अनुभव से प्रेम होता है और प्रेम से समर्पण भाव ईश्वर के प्रति जागृत होता है, वो भक्ति है। तो इसीलिए राजयोग भक्ति योग है। राजयोग संन्यास योग भी है। भारत में हम देखते हैं कुछ लोग भगवान के लिए अपना घर बार छोड़कर के किसी तीर्थ पर जाकर या जंगल में जाकर आश्रम बनाकर रहते हैं। तो कई बार संन्यास का नाम सुनकर के हमको भी भय होता है, हाँ, कि ईश्वर की ओर जाना माना संन्यासी बनना, कहीं घर बार छूट तो नहीं जाएगा। हाँ, कहीं हम तो इस संसार में रहते हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमारे कर्तव्य हैं, कहीं हमारी जिम्मेवारियों से हम मुंह तो नहीं मोड़ लेंगे, या हम अपने संबंधों से दूर तो नहीं हो जाएंगे, या किसी दूसरे को भी अपने परिवार के सदस्य को जाते हुए देखते हैं तो यही भय मन में पैदा होने लगता है। लेकिन राजयोग हमें इस तरह का संन्यास नहीं सिखाता। राजयोग हमें बेहद का संन्यास सिखाता है, यानी संसार में रहते हुए। आपने सुना आज का ग्रस्त जंजाल है, इस ग्रस्त को हम आश्रम बनाते हैं, ग्रस्त को ही आश्रम बना देते हैं। यानी घर ग्रस्त में रहते हुए जो पांच विकार हैं, मनुष्य को दुख देते हैं, उसके जीवन को नरक के समान बना देते हैं, उनसे हम छूटना ही चाहते हैं, उन विकारों का हम संन्यास करते हैं, बुराइयों का संन्यास करते हैं। और इस संसार में रहते हुए बुराइयों का संन्यास करना उस संन्यास से भी महान है जो घर बार छोड़ करके किसी तीर्थ स्थान पर जाकर बैठते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भले ही घर बार छोड़कर संन्यासी हो जाते हैं लेकिन फिर भी बुराइयों को नहीं छोड़ पाते, और जब बुराइयों को नहीं छोड़ पाते तो वो संन्यास ही व्यर्थ हो जाता है। लेकिन इस संसार में रहते हुए बुराइयों का त्याग करना सचमुच बेहद का संन्यास है जो भगवान हमें सिखाते हैं राजयोग के माध्यम से। और राजयोग समत्व योग भी है। समत्व का अर्थ होता है मन समान स्थिति में रहे, यानी संसार के जो उतार चढ़ाव आते हैं, हमने समझा निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, ये स्थितियां जीवन में बनती रहती हैं। और ये मनुष्य के मन को विचलित करती हैं। बहुत अधिक दुख होगा तो भी इंसान से सहन नहीं होता है, और बहुत सुख हो जाएगा जीवन में तो भी अहंकार हो जाता है। तो फिर योगी के जीवन में दोनों ही स्थितियों में समानता रहती है। ये सिद्धि, ये सफलता हमें राजयोग के अभ्यास से मिलने लगती है, क्योंकि दोनों ही गलत है, हम कहेंगे दोनों ही अज्ञान है। तो राजयोग समत्व योग है, और राजयोग हठ योग भी है। हम देखते हैं आज संसार में, खासकर भारतवर्ष में, भक्ति में लोग भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कई प्रकार के हठ करते हैं। हठ माना एक प्रकार की जिद। जैसे हम कोई उपवास रखेंगे, नवरात्रे होते हैं तो हम 9 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि मुझे देवी के दर्शन होने चाहिए, या देवी मेरी ये मनोकामना पूरी करे। फिर चाहे मृत्यु हुई क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम ईश्वर से किसी भी प्रकार का हठ करते हैं, चाहे उनका साक्षात्कार करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, या अपनी कोई सांसारिक मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, तो वो हठ योग है। लेकिन राजयोग में हम इस प्रकार का हठ नहीं करते हैं। राजयोग में हम दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, मानो हम वो व्रत रखते हैं, और किसी भी हालत में हम उस व्रत को तोड़ेंगे नहीं। चाहे कितनी भी प्यास लगी होगी, हम पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमने पानी पी लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा, भगवान नाराज हो सकते हैं, इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। तो ऐसे ही मैंने व्रत किया, आज सारा दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। फिर चाहे जो भी हो जाए, अब कई परिस्थितियां पैदा होंगी जब हमें गुस्सा आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने भगवान से प्रतिज्ञा की है मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, उस व्रत को नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि अगर व्रत को तोड़ा और ये प्रतिज्ञा मैंने भगवान से की है, तो फिर इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। ये प्रतिज्ञा से परिवर्तन हम राजयोग में करते हैं, इसीलिए राजयोग हठ योग भी है। अब हम सभी ने समझा कर कि परमात्मा को हम विभिन्न विधियों से याद करते हैं, लेकिन वो विधियां सफल नहीं होती हैं। हम मंत्र जपते हैं, माला फेरते हैं, या हम अनेक प्रकार के यज्ञ तप करते हैं, कुछ लोग यज्ञ हवन भी करते हैं, कथा भी करते हैं, लेकिन मन भगवान में नहीं लगता है। क्योंकि जो ईश्वर से परिचय, संबंध और प्राप्ति का ज्ञान हमें होना चाहिए था वो नहीं था, लेकिन अब हमें वो सब परिचय मिला है। हम जो मंत्र जपते हैं भगवान के लिए, राजयोग में हर संकल्प ही एक मंत्र की तरह है। मंत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मन को सलाह देना। जैसे मंत्री, मंत्री का अर्थ होता है सलाहकार। जैसे राजा को मंत्री होता है, तो मंत्री माना राजा को हर अच्छे बुरे की समझ देने वाला, वो सलाहकार। तो ऐसे ही मंत्र माना जो मन को दिशा देने वाला हो, मन को मुक्ति देने वाला हो। एक अर्थ ये भी होता है मंत्र जो मन को मुक्ति दे। तो वो मंत्र जब हम जपते हैं तो जरूर थोड़े समय के लिए हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि मन जो है वो दुनिया की बातों से बाहर आ जाता है। लेकिन मंत्र संस्कृत में होते हैं और संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, हम उस मंत्र के भाव को समझ नहीं पाते। तो भले मंत्र जपते हैं, लेकिन हमारे भाव भगवान के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, तो हम अनुभव नहीं कर पाते। थोड़ी शांति जरूर मन को मिल जाती है। एक बार ऐसे ही एक बच्चा, गांव का बच्चा था, और उसकी माँ ने उनके घर में जो भी गायें थी उसको चराने के लिए भेजा। तो वो गायें को चरा रहा था, घास का मैदान था, गायें तो अपने आप घास खा रही थी। तो बच्चा जो है वो अकेला बैठा था पेड़ के नीचे, उसको गायों की रखवाली करनी थी। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं यहां बैठा हूं, अब मैं क्या करूं, खाली बैठा हूं तो क्यों ना मैं भगवान से बातें करूं, क्योंकि उसकी माँ उसको भगवान के बारे में सुनाती रहती थी। तो उसकी इच्छा हुई कि भगवान से बातें करके देखता हूं। तो उसने वही बात करना शुरू किया कि देखो मेरी ये जो गायें हैं ये तो अपने आप चर रही हैं, मैं तो खाली बैठा हूं। ऐसे ही भगवान ने भी हमको दुनिया में छोड़ दिया है, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, भगवान तो ऊपर मेरी तरह खाली बैठा होगा, तो वो मेरे पास आ सकता है और खेल सकता है, बातें कर सकता है। तो इस तरह से वो मन में ईश्वर के बारे में सोच रहा था और मन ही मन भगवान से बातें कर रहा था। तो गांव के जो पंडित जी थे वो वहां से निकले, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा अपने आप में ही कुछ बोल रहा है। तो उन्होंने पूछा, बेटा यहां तो कोई भी नहीं है, तुम किससे बातें कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं भगवान से बातें कर रहा हूं। भगवान से बातें कर रहे हो? अब भगवान से कैसे बात कर रहे हो? तो उसने अपने मन की सारी बात सुनाई कि मेरे मन में क्या विचार चला। तो पंडित जी ने कहा, ऐसे भगवान को याद नहीं किया जाता है, भगवान को याद करने की विधि होती है। तो उसने एक संस्कृत का श्लोक, जो पंडित जी करते थे, वो श्लोक बच्चे को सुनाया, कहा इसको जपो, ये श्लोक मन में बोलोगे तो माना तुमने भगवान को याद किया। अब वो संस्कृत तो उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल थी, तो वो तो पहले तो समझ ही नहीं पाया। फिर वो पंडित जी ने कोशिश करके उसको रटवा दिया, अब एक श्लोक है, 4-6 बार रटवा दिया, बच्चे को याद हो गया। और फिर पंडित जी चले गए और वो बच्चा जो है वो श्लोक रटने लगा, लेकिन उसको कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब वो पंडित जी घर गए और वहां जैसे अपना पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करना शुरू किया, तो भगवान से उन्होंने ये कहा, देखो आज मैंने एक बच्चे को सिखाया कैसे भगवान को याद करना होता है। तो उसके मन में उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान कह रहे हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया। वो बच्चे को बेचारे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। पहले तो वो इतनी प्यार भरी बातें मेरे साथ कर रहा था और मेरा प्यार भी उसको मिल रहा था, क्योंकि उसके मन के भाव मुझ तक पहुंच रहे थे। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हमको किसी ने सिखा दिया है, कोई मंत्र दे दिया है, उसका जाप करना है, वो हमने कर दिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन राजयोग में इसीलिए हम मंत्रों का इस तरह से अभ्यास नहीं करते, क्योंकि मन भगवान से जुड़ता नहीं है। लेकिन जो चिंतन हम अपने मन को देते हैं, जैसे मैं आत्मा हूं, हमने समझा मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, तो ये मैंने अपने आप को समझाया मैं कौन हूं। आज तक हम अपने आप को देह समझते रहे और शरीर समझकर ही अपने सारे जीवन का व्यवहार करते रहे हैं, लेकिन अब आत्मा समझकर हमें अपने जीवन के व्यवहार को करना है, तो मेरी आत्मा के गुण अपने आप स्मृति और व्यवहार में आने लगेंगे। तो ये सही रूप से हमारे जीवन में मंत्र का कार्य करने लगता है। तो राजयोग अभ्यास में हम मन की कुछ अवस्थाओं से गुजरते हैं, क्योंकि जब हम योग प्रारंभ करते हैं तो हमारा मन ईश्वर से लग जाए, उस परम शक्ति के स्रोत से हमारा संबंध हो जाए, वो इतना सहज नहीं होता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है। कल भी हमने ये बात की थी कि मन सूक्ष्म है, इसलिए जिस दिशा में हम मन को चलाना चाहते हैं हमारा मन नहीं चलता है। एक बार हमने एक चिंतन किया, दूसरी ही घड़ी हमारा मन दूसरे चिंतन में चला जाएगा। एक विषय पर मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो फिर योग अभ्यास के समय हमें मन की इन स्थितियों को समझना होता है, ताकि सहज हम मन को ईश्वर की ओर ले जा सकें। तो राजयोग अभ्यास की जो पहली अवस्था है वो है ज्ञान का मनन चिंतन। हमने ईश्वरीय ज्ञान को समझा है, आध्यात्मिकता से स्वयं का परिचय और परमात्मा का परिचय प्राप्त किया है, तो हम उसका चिंतन करते हैं मन के अंदर। लेकिन जैसे ही हम चिंतन प्रारंभ करते हैं तो एक संघर्ष की स्थिति पैदा होने लगती है। आपने मन को विचार दिया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, स्वभाव से मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब दूसरा विचार क्या आ जाएगा तुरंत? या तो हमारी कुछ मान्यताएं जो पहले से बनी हुई हैं, वो हमारे में संशय पैदा करना शुरू कर देंगी। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैंने तो आत्मा को देखा नहीं है, और क्या आत्मा यहाँ रहती है? आत्मा तो मैंने सुना है पूरे शरीर में व्यापक होती है मानो। अब आत्मा के बारे में पहले मैंने क्या सुना है, क्या मेरी धारणाएं हैं, वो मेरे मन में विघ्न डालने लगती हैं, व्यवधान पैदा करने लगती हैं। या फिर दूसरे विचार, इसके उसके माना किसी के बारे में हम सोचना शुरू कर देंगे। किसी ने मुझे कहा, अच्छा इसने मुझे ऐसा कहा था, आत्मा तो कहीं रह गई, लेकिन हम उनकी बातों में चले जाते हैं। या फिर अभी हमें क्या करना है, हॉल से बाहर निकल करके नाश्ता करना है, साइट सीन के लिए जाना है, कहीं उसका रिजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब सोचते हैं योग करना शुरू किया था लेकिन ये क्या हो रहा है, तो इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। ये सबके साथ होता है। जैसे शास्त्रों में एक यादगार है, देवताओं और असुरों ने सागर मंथन किया, और उस सागर मंथन में सबसे पहले क्या निकला, क्या निकला? आप सबको पता है क्या निकला? विष निकला। और वो इतना विषैला था कि उस विष के प्रभाव से देवताएं बेहोश होने लगे। फिर उन्होंने सोचा, अगर ये विष हमारे में चला गया तो हम तो जीवित ही नहीं रहेंगे, हमने तो अमृत के लिए सागर मंथन किया है, तो फिर इस विष को समाप्त करना जरूरी है। तो उन्होंने शिवजी का आह्वान किया, और जब शिव आए तो उन्होंने उस विष को ग्रहण किया, धारण किया, और उसके बाद फिर से सागर मंथन प्रारंभ हुआ, और फिर अमृत निकला, और वो अमृत भी मोहिनी रूप में विष्णु जी ने देवताओं को पिलाया, जिससे उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति हुई। ये कहानी है। अब ये तो कहानी है, लेकिन वास्तव में हमारे मन में यही प्रक्रिया होती है। हाँ, देवासुर संग्राम, जो शुद्ध विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, श्रेष्ठ विचार हैं, वो देवताओं के समान हैं, और जो मन के बुरे विचार हैं, अशुद्ध विचार हैं, वो असुर के समान हैं। तो जैसे ही हम योग शुरू करते हैं, हमारे मन में कोई कोई बुरी वृत्तियां, हमारे बुरे संस्कार भी हैं, वो भी जागृत हो जाते हैं, तो दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है, तो हमारा सिर दर्द होने लगता है। अब योग तो नहीं लग रहा है, सिर भारी हो जाता है, तो हम सोचते हैं योग करने बैठते हैं, सिर भारी हो जाता है, और ही मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या फायदा ऐसे मैं बैठकर योग अभ्यास करूं, इससे तो अच्छा है मैं कोई काम करूं। तो हम घबराने लगते हैं, निराश हो जाते हैं कई बार। लेकिन इस अवस्था में हमें न घबराना है न निराश होना है। जैसे होम्योपैथी के जो डॉक्टर होते हैं ना, उस दवाई की ये शैली होती है कि पहले वो बीमारी को बाहर निकालती है और उसके बाद वो हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाती है। जैसे एलोपैथिक दवाई लेंगे तो बीमारी दब जाएगी, दवाई बंद करेंगे फिर बीमारी शुरू हो जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों के उपचार की वृद्धि वो इस तरह से है कि वो दबी हुई बीमारी को बाहर निकालेगी। पहले तो बीमारी बढ़ती हुई भी दिख जाती है, कई बार तो पेशेंट घबरा जाता है कि मेरी बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ गई, लेकिन वास्तव में वो दवाई लग रही है और थोड़ा धैर्य रखा तो वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो यहां भी अंदर जो दबे हुए संस्कार हैं आत्मा के अंदर, बुरे संस्कार जो दबे हुए हैं वो बाहर आने लगते हैं। अभी तक हमने कभी देखा ही नहीं था उनको, अभी तो आत्मचिंतन शुरू किया, तो जैसे ही हम अंतर्मुखी हुए हमने अंदर की यात्रा प्रारंभ की, अपने भीतर की ओर देखना शुरू किया, तब हमें समझ में आने लगा कि हमारे मन में क्या क्या भरा हुआ है, आज तक तो देखा ही नहीं था। तो फिर हमें घबराना नहीं है, लेकिन अपने अभ्यास को हम जारी रखें, हम परमात्मा शिव को अपने साथ रखें। जैसे कहा विष को शिव को अर्पित कर दिया, शिव को सौंप दिया और शिव ने उस विष को समाप्त कर दिया, तो हम परमात्मा को अपने साथ रखते हैं तो ये हमारे विचार धीरे धीरे पीछा छोड़ने लगते हैं और शुद्ध चिंतन के विचार हमें अमृत धारा के समान हम सुख देने लगते हैं, शांति का अनुभव कराने लगते हैं। और जैसे कहा लक्ष्मी ने उसे धारण किया, यानी फिर ऐसे लक्षण हमारे अंदर आने लगते हैं, हमारे व्यवहार में जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो जैसे हम मानो किसी दीवार को तोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़े लगाएंगे और वो दीवार टूटने में मुझे 100 हथौड़े लगाने पड़े, 100वें हथौड़े में वो दीवार गिर गई। लेकिन जो मैंने पहले 99 हथौड़े लगाए, क्या वो बेकार गए? क्या कहेंगे, बेकार गए? नहीं, लेकिन हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी। तो जब हम अभ्यास शुरू करते हैं और हमारे मन में यदि ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो हर अभ्यास हमें सफलता की ओर ले जा रहा है। यदि हम आधा घंटा बैठते हैं, आधा घंटा तो बहुत लंबा समय है, चलो हम 10 मिनट भी बैठते हैं और 1 मिनट भी मेरा योग नहीं लगा, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ही मुझे थोड़ी शांति का अनुभव हुआ, तो जब हम अगली बार योग में बैठेंगे तो वो कुछ सेकंड की शांति मिनट में बदल जाएगी और वो अनुभव ही हमें योग की ओर स्वतः ले जाएगा। तो ये प्रारंभिक अवस्था जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उस मनन चिंतन में हमारे अपने दूसरे दूसरे प्रकार के विचार विघन रूप बनते हैं जिसे हमें धीरे धीरे पार करना होता है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम एकदम गाड़ी चलाना नहीं सीख जाते, हम डरते हैं पहले, तो पहले गियर पर ही उसे रखेंगे, बहुत कम स्पीड पर चलाएंगे और कहीं टकरा ना जाए बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो फिर हम गाड़ी चलाते हैं और जहां तक हमें पहुंचना है आराम से हम फोन पर बातें करते करते भी चलाते हुए पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब पहुंच गए, या कोई भी दूसरे काम भी, किसी दूसरे से हम बातें कर रहे हैं जो हमारे पास बैठा है वो बातें करते हुए हम पहुंच जाते हैं। तो अभ्यास से हमें उसमें सफलता मिलती है, जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना हम उसमें धीरे धीरे कुशल होते जाएंगे। एक बार ऐसे ही महाभारत में प्रसंग आता है कि अर्जुन कैसे इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बना। तो रात को पांचों पांडव अपने कमरे में सो रहे थे तो अर्जुन की नींद खुली और उसने देखा कि भीम उसके पास नहीं है। भीम उसके पास ही सोया हुआ था तो उसको लगा ये भीम कहाँ चला गया। तो वो उठकर गया, ढूंढते ढूंढते तो देखा कि रसोई में कोई कुछ खा रहा है। तो उसने आवाज लगाई, भीम। तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ, रसोई घर में हूँ। तो उसने कहा, रसोई घर में अंधेरे में तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, मुझे भूख लगी है और तुमको पता है मुझे कितनी भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो फिर मुझे नींद भी नहीं आती है, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूँ। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, भोजन तो कर रहे हो लेकिन अंधेरे में ये भोजन मुंह में कैसे जा रहा है, तुम्हें दिखाई कैसे दे रहा है। तो उसने कहा, मुझे भोजन खाने का बहुत अच्छा अभ्यास है, सीधा ही कौर मुंह में जाता है, कहीं और नहीं जाता है। तो ऐसे ही अर्जुन को तुरंत उसकी बात लग गई। उसने कहा, ये अंधेरे में बिना गलती के भोजन मुंह में डाल सकता है, तो क्या मैं अंधेरे में निशाना नहीं लगा सकता हूँ। उसी समय उसने अपना धनुष उठाया और रात के अंधेरे में ही उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने लक्ष्य पर निशाना साधने लगा। और थोड़े समय में अंधेरे में भी वो निशाना लगाने में अर्जुन कुशल हो गया। तो इसीलिए आज तक भी अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई नहीं हुआ, इतना उसने अभ्यास किया उसका। तो राजयोग भी मन के अभ्यास पर निर्भर है, और प्रथम अवस्था में, चिंतन की अवस्था में, जितना हम मन को श्रेष्ठ संकल्पों का, ज्ञान के विचारों का अभ्यास देते हैं, हमारा मन सहज ईश्वर की ओर मुड़ता है और हमारे बुरे विचार जो हैं वो दूर होते जाते हैं। दूसरी अवस्था हम अनुभव करते हैं जब हम प्रथम अवस्था से ऊपर उठते हैं, तो वो है ईश्वर के साथ वार्तालाप। ज्ञान का चिंतन किया, हम पहुंचे परम धाम में, आपने कल पूरा दिन योग का अभ्यास किया है और आपने समझा कि प्रथम अवस्था में हमने आत्मचिंतन किया, हम मन को परम धाम में ले जाते हैं जहां परमात्मा निवास करते हैं, और वहां हम परमात्मा के ज्योति स्वरूप को अनुभव करते हुए उनसे रूह रिहान करेंगे, यानी रूह की रूह से बातचीत, संवाद या वार्तालाप, कम्युनिकेशन। और वो संबंध के आधार पर ही होता है। कितना समीप हमारा ईश्वर के साथ संबंध है, उस आधार पर भी हम दिल से अपने भाव उनके प्रति व्यक्त करते हैं, यानी ना हृदय से बातचीत। ऐसे हम कहेंगे कि वो बहुत ही, जैसे किसी करीबी के साथ हम बात करते हैं, तो कैसे हम अपने दिल की हर बात उन्हें बताते हैं। जिनके साथ हमारा दूर का संबंध होता है, कभी महीनों में हम मिलते हैं, तो उनसे हम क्या पूछेंगे, आपके क्या हालचाल हैं, कुछ मौसम के बारे में बात कर लेंगे, और फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि अब क्या बात करें, क्योंकि ज्यादा उनसे बात करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम अपने जीवन को उनके साथ शेयर नहीं करते, लेकिन जो हमारे साथ दिन रात होते हैं उनके साथ हम बातें करते हुए थकते नहीं हैं, अपनी हर बात हम उनको बताना चाहते हैं। तो खासकर माता पिता बच्चे का जो संबंध है वो इतना समीप संबंध होता है, या फिर शिक्षक का संबंध है, गुरु का संबंध है, दोस्त का संबंध है, और पति पत्नी जिसे हम साजन और सजनी का संबंध कहेंगे। तो ये छह संबंध मुख्य रूप से अनुभव करते हुए राजयोग में हम ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं। भगवान हमारा माता पिता है, ये भारतीय संस्कृति में ही माना गया, और किसी भी संस्कृति में ईश्वर को माता पिता के रूप में याद नहीं करते, किसी भी धर्म में भी याद नहीं करते, सिर्फ पिता के रूप में याद करते हैं, उसे गॉड फादर कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, लेकिन भारत में उसे माता पिता कहा गया, वो हमारी माता भी है। जैसे माँ बच्चे को स्नेह दुलार देकर के पालना देती है और उसे समाज में जीने लायक बनाती है, तो ऐसे ही भगवान भी हमें प्रेम से पालना देकर के इस संसार में लायक बनाते हैं, यानी हमारे अंदर वो श्रेष्ठ संस्कार भरते हैं। वो हमारा पिता है। पिता बच्चे को सर्व प्राप्तियां कराता है, उसको जो भी आवश्यकता है वो उसकी पूरी करता है, और जिस घड़ी बच्चे का घर में जन्म होता है उस घड़ी ही वो वारिस हो जाता है। उसको मांगना नहीं पड़ता है कि ये सब कुछ मेरा है, नहीं, उसका अधिकार होता है, जो उसके पिता का है वो अधिकारी बनता है। और पिता ये संसार में जो पिता है वो तो जन्म देने वाला पिता है, लेकिन भगवान हमें शरीर को जन्म देने वाला पिता नहीं है, लेकिन वो दिव्य जन्म देने वाला पिता है। जैसे दुनिया में भी हम कई प्रकार के पिता कहते हैं, जैसे हमने महात्मा गांधी को बापूजी कहा, राष्ट्रपिता कहा। तो क्यों राष्ट्रपिता कहा? क्योंकि उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया, हमारे देश के लिए इतने महान कार्य किए कि वो राष्ट्रपिता कहलाए। पिता समान कार्य जिम्मेवारी निभाई उन्होंने अपने देश के प्रति। ऐसे ही डॉक्टर है, किसी को नया जीवन देता है। कोई मरने पर है, डॉक्टर ने इलाज किया और उसको जीवन दान मिल गया, तो कहते हैं डॉक्टर ने इसको नया जन्म दिया। तो कैसे जन्म दिया? तो ऐसे ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो इस दिव्य ज्ञान के द्वारा, इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, या कहें कि वो ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें ये ज्ञान देकर नया दिव्य अलौकिक जन्म देते हैं। और जो आत्माएं पतित बन गई हैं, उन आत्माओं को वो फिर से पावन सत्व प्रधान बनाते हैं, इसलिए वो हमारा परम पिता है। और आत्मा उसे इस संसार के चक्र के पुनर्जन्म लेते हुए भी उसे नहीं भूल पाती है, और जब भी उसे आवश्यकता होती है हम किसे याद करते हैं? पता है कि मनुष्य मेरी वो मदद नहीं कर सकता जो भगवान मेरी मदद कर सकता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति, वो अपनी जीवन यात्रा को सपने में देख रहा था, उसे सपना आ रहा था, वो भगवान का बहुत भक्त था, परम भक्त जिसे कहते हैं। तो उसने देखा कि उसकी जीवन यात्रा वो समुद्र के किनारे, जहां उसके जीवन में बहुत सुख के पल थे, जब वो बहुत प्रसन्न था, आनंदित था, तब तो दो निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी दो पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब वो अपने जीवन में बहुत दुखी था, उदास था, परेशान था, तब चार निशान दिखाई दे रहे हैं, तब दो निशान दिखाई दे रहे हैं, और जब सुखी था तब चार निशान दिखाई दे रहे हैं उल्टा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, दुनिया में भी लोग दुख के समय साथ छोड़ देते हैं, तो दुख के समय क्या भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया? सिर्फ दो निशान दिखाई दे रहे हैं, मैं अकेला ही चल रहा हूं। सुख के समय भगवान मेरे साथ है। तो उसने भगवान से शिकायत की, भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हें दो चरण दिखाई दे रहे हैं, उस समय तुम्हारे दुख के समय मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था, ये दो पैर तुम्हारे नहीं हैं, मेरे हैं। तो कई बार हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, जब हम सचमुच भगवान पर निर्भर हो जाते हैं, अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देते हैं, तो परिस्थितियों को पार करने की शक्ति हमारे अंदर कहाँ से आ जाती है? वो भगवान कैसे हमारी रक्षा करता है, रक्षक बन जाता है, हमें वो समझ में भी नहीं आता है और हम सहज निकल जाते हैं। तो पिता के रूप में वो हमारा रक्षक भी है। और जैसे माता पिता स्वयं बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, बच्चों को मांगना नहीं पड़ता है, माता पिता सोचते हैं इसका क्या भविष्य होगा, इसको हमें क्या भोजन देना है, उसको हमें कैसे वस्त्र देने हैं, कौन चिंता करता है? माँ बाप कुछ चिंता करते हैं, मांगने की जरूरत तो नहीं होती। तो राजयोग में हमें भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये संबंध ईश्वर के साथ अनुभव किया कि वो मेरा पिता है, तो वो मेरी चिंता कर रहा है, वो स्वयं मेरी आवश्यकताएं स्वतः ही पूरे करने वाला है। जैसे सूर्य के सम्मुख जब हमारा मुख होता है तो परछाई पीछे पीछे आती है, हमें परछाई के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आज तक हम भक्ति में भगवान से मांगते रहे क्योंकि हमने दास का संबंध जोड़ा था। दास का संबंध, हे ईश्वर मैं आपके चरणों का दास हूं, मैं वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं, ये नहीं। चरणों की धूल हूं, चरणों का दास हूं, इसीलिए हमेशा भगवान के सामने भिखारी बनकर जाते हैं। ये दे दो, वो दे दो, दास क्या करता है, भिखारी क्या करता है, मांगता है ना, और फिर भी मिलता है। कल हमने सुना कि जो भीख मांगने वाला आता है हमारे सामने, क्या हम उसको भीख देते हैं? देते हैं, आसानी से देते हैं, इतना सहज भीख भी नहीं मिलती है। लेकिन एक बच्चे का अधिकार है तो माँ बाप वो नहीं खाएगा तो भी जबरदस्ती खिलाएंगे, होता है कि नहीं होता? वो मांग रहा है तो भी नहीं मिल रहा है और बच्चे को जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। तो संबंध की बात है कि हमने कौन सा संबंध उसके साथ अनुभव किया है, तो इस संबंध में हमें सहज प्राप्ति होती है। जिसे कहा बिन मांगे मोती मिलते हैं। फिर दूसरा संबंध है ईश्वर के साथ शिक्षक का संबंध। हम देखते हैं जब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने शिक्षक को भी वो प्यार करने लगते हैं और बात बात में घर में अपने टीचर की बातें करेंगे। हाँ, मेरे टीचर ने मुझे आज ये सिखाया, मेरे टीचर ने ऐसा कहा। माँ कुछ सिखाएगी तो कहेगी नहीं माँ आप गलत कहती हो, मेरी टीचर तो ऐसा कहती। माँ से भी ज्यादा उसको टीचर की बात अच्छी लगती है। तो परमात्मा भी परम शिक्षक बनकर के हमें ये सत ज्ञान देते हैं। और जब हम भगवान की बातों का, ज्ञान की बातों का स्मरण करते हैं तो स्वतः ही उनके साथ हमारा बुद्धि योग जुड़ने लगता है और वो ज्ञान हमारे लिए राह बन जाता है। ज्ञान प्रकाश की तरह काम करता है, ज्ञान एक शक्ति की तरह भी काम करता है। तो परमात्मा हमारा परम शिक्षक है, ऐसा समझ करके भी हम उसे सहज याद कर सकते हैं। फिर वो हमारा गुरु भी है। हर मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु बनाने की कोशिश करता है क्योंकि हम समझते हैं गुरु ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग देने वाले हैं, वही हमें सद्गति की राह दिखाने वाले होते हैं। बिना गुरु के तो भगवान मिलेगा नहीं। तो परमात्मा हमारा सच्चा सद्गुरु है, यानी वो गुरुओं का भी गुरु है। और जैसे गुरु के प्रति सेवा भाव होता है, सेवा भाव से हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनसे हम वरदान लेना चाहते हैं ताकि जीवन हमारा सहज हो जाए। तो यहाँ भी परमात्मा हमें गुरु के रूप में वरदान देते हैं और खास उनके वरदानों का समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेले का समय। आप सभी यहाँ पर, आपको आपकी दिनचर्या में कहा गया है सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और उस समय भगवान अपने सर्व भंडारे अपने बच्चों के लिए खुले रखते हैं। जो हम वरदान उनसे लेना चाहें वो हमें सहज प्राप्त होता है। और अगर वो समय हम सोते रह गए, ऐसे कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया, क्योंकि वो सोने का भी सबसे अच्छा समय होता है। तो अगर हम सोते रह गए तो उन वरदानों से हम वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए अमृत वेले के समय हमें विशेष, चाहे थोड़ा पुरुषार्थ करके भी जाग करके भगवान से वरदान लेने ले। कहते हैं ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा, एक कहावत है दुनिया में, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो क्या आप सोए हुए थे? हाँ, तो सचमुच ये वो समय है जब भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्वयं आत्माओं को भाग्य बांट रहे हैं, तो हमें उस समय को सोकर नहीं गंवाना है, उस सद्गुरु के वरदानों का जरूर हमें अनुभव करना है। फिर परमात्मा हमारा दोस्त भी है, जैसे दुनिया में हर एक के कोई ना कोई दोस्त हाँ या सखी जरूर होती है, क्योंकि हमें पता है जो बातें हम अपने माता पिता से भी नहीं कर सकते वो हम अपने दोस्त से कर सकते हैं। हर तरह की बात दोस्त के साथ करते हैं और वो दोस्त से हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरी बातें किसी दूसरे से ना कहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी वो बातों को समा नहीं पाते हैं और वो बातें दूसरों तक कई बार पहुंच जाती हैं, लेकिन ईश्वर हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारी बातें सुनता है, लेकिन सुन करके वो बिल्कुल समा लेता है। इज वेरी साइलेंट एंड फेथफुल लिसनर। हम अपने दिल की सारी उलझन, सारे दुख, सारी परेशानी भगवान के साथ दोस्त के रूप में शेयर कर सकते हैं। वो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हमारा दोस्त है। एक बार ऐसे ही किसी की भगवान से दोस्ती हो गई, कहानी है। तो दोस्ती में उसने भगवान से कहा कि भगवान आप तो वैकुंठ के मालिक हो, तो क्यों नहीं कुछ दिन के लिए मुझे भी ये अनुभव करने दो, वैकुंठ के मालिक का अनुभव क्या होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें दोस्ती में इतना सा भी अनुभव नहीं करा सकता। तो उन्होंने वैकुंठ का अधिकार कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त को दे दिया। अब जब वो वैकुंठ का मालिक बना और उसके सुख वैभव उसके सामने आए, तो अब उसकी इच्छा ही नहीं होती थी उसे छोड़ने की, ऐसे सुख थे वैकुंठ के। तो उसने सोचा कि ये तो थोड़े दिनों के लिए ही है, ये तो फिर सारे सुख खत्म हो जाएंगे, क्या करूं मैं जो ये सदा ही सुख रहे। तो अब वैकुंठ में तो जो आप ऑर्डर करो वो तुरंत पूरा हो जाता है, वहां की शक्ति ही ऐसी होती है। तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं अपने लिए ऐसा ही दूसरा वैकुंठ बना लूं, ताकि मुझे जब ये वैकुंठ छोड़ना पड़े तो मुझे दूसरा वैकुंठ मिल जाए। तो उसने उसी समय, क्योंकि वो ही राजा था उस समय, उसने जो ऑर्डर दिए वो सब फटाफट काम होना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों के भीतर एक दूसरा वैकुंठ तैयार हो गया। भगवान ने देखा कि ये मेरा दोस्त तो बहुत चतुर निकला, इसने वैकुंठ लेकर के दूसरे थोड़े ही दिनों में अपने लिए भी वैकुंठ तैयार कर लिया। लेकिन खुश हुए, उन्होंने कहा कि सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। हाँ, भले ही तुम मेरी ही तरह वैकुंठ में रहो, अभी हम दोनों समान हो गए। तो समानता में दोस्ती निभती है। जैसे आपने कल सुना कि हम जितना ईश्वर के समान स्थिति में होते हैं उतना हमारा योग सहज लगता है। दुनिया में भी हम संबंध जोड़ते हैं तो हम समानता देखते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे मित्र होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे समान होते हैं, कहीं विचारों में समान होते हैं, कुछ व्यवसाय में समान होते हैं, कुछ आदतों में समान होते हैं, तभी हमारी दोस्ती उनके साथ बनती है। तो परमात्मा के साथ भी हमारी कुछ समानताएं हैं, उन समानताओं का हम अनुभव करेंगे तो हम उसको दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह भी याद कर सकते हैं। और कहां भी चलते फिरते भी हम उसे दोस्त की तरह अपने साथ अनुभव कर सकते हैं, अपने कार्य में भी हम उसे दोस्त की तरह अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे ही परमात्मा हमारा साजन भी है। साजन का जो संबंध होता है वो वफादारी, साजन या सजनी का जो संबंध है वो वफादारी और कुछ वायदों पर निर्भर होता है। तो ईश्वर के साथ भी हम वफादार रहें, यानी मन सच्चा और ईमानदार रहे, तो वो संबंध हम अनुभव करते हैं। जैसे हमने देखा भक्ति में मीराबाई ने उनके साथ पति का संबंध अनुभव किया, तो जब उनको आवश्यकता हुई तो उन्होंने उस संबंध को निभाया। मीराबाई को जब जहर का प्याला दिया गया तो वो जहर अमृत में बदल गया। तो भगवान भी जिस भाव से हम उसे याद करते हैं उस भाव से उस संबंध को सदा ही निभाते हैं। दुनिया में जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हमारा जो संबंध है वो निभाएगा। हाँ, जो इंसान सुख देता है वो हमें दुख भी दे सकता है, जो हमें प्रेम करता है वो हमसे नफरत भी कर सकता है, लेकिन एक ईश्वर से जो संबंध हमने जोड़ा वो समय आने पर अवश्य उस संबंध को वफादारी से निभाता है। परमात्मा हमारा बच्चा भी हो सकता है, तो हम ईश्वर के बच्चे हैं, लेकिन क्या भगवान हमारा बच्चा हो सकता है? ये संबंध भी कई भक्तों ने अनुभव किया, खासकर सती अनसुईया ने उसे बच्चे के रूप में याद किया, तो भगवान ने उसे बच्चे के रूप में अनुभव भी कराया। एक बार ऐसे ही अपने यहाँ राज्यों का अभ्यास करने वालों में एक माता जी, वो सेंटर पर नियमित रूप से क्लास करते थे और उनके तीन बेटे थे। अब तीनों बेटे बड़े हो गए और बड़े होकर के वो नौकरी के कारण दूसरे शहर में चले गए। अब ये अकेले रह गए अपने शहर में और उन्होंने भगवान को अपना बेटा बना लिया, कि परमात्मा शिव मेरा चौथा बेटा है, मेरे वो तीन बेटे तो हैं मेरे साथ नहीं रह सकते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ये मेरा चौथा बेटा तो हमेशा मेरे साथ रह सकता है, ये उसका भाव था। तो हमेशा वो भगवान को अपना बेटा मानती थी और एक बार ऐसे ही वो बीमार हो गई, उसे बुखार हो गया। अब इतने शरीर में दर्द था कि वो उठकर पानी का ग्लास भी नहीं ले सकती थी। बुखार में ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार, कोई भी नहीं था घर में, सर्वेंट भी नहीं थी, पति कहीं बाहर गए हुए थे। तो अब उसने अपने चौथे बेटे को याद किया, भगवान आप मेरे बेटे हो, कम से कम मुझे पानी तो पिला सकते हो, मैं उठकर पानी भी नहीं पी सकती हूँ। तो उसने ऐसा महसूस किया, पानी तो कोई लेकर के नहीं आया, लेकिन ऐसा उसने महसूस किया कि कोई उसका सिर दबा रहा है, हाथ पैर दबा रहा है और बहुत अच्छे से कोई उसको सहला रहा है। उसे नींद आ गई और तीन चार घंटा वो इतनी गहरी नींद सो गई कि जब सोकर उठी तो बुखार भी नहीं था, दर्द भी नहीं था और वो बिल्कुल ठीक थी। तो देखिए भगवान ने कैसी मदद की कि बीमारी से ही मुक्त कर दिया, ऐसा बेटे का संबंध ईश्वर ने निभाया। तो ऐसे ही परमात्मा को हम राजयोग में किसी ना किसी संबंध से अपने दिल की बात कहते हैं और फिर हम उसका प्रत्युत्तर भी भगवान से लेते हैं। बातें करने का मतलब ना सिर्फ कहना लेकिन सुनना भी सही कि वो हमसे क्या कह रहे हैं, और धीरे धीरे मन तीसरी स्थिति में चला जाता है जो एकाग्रता की स्थिति है। तो मन परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र होने लगता है, जैसे कि मन उनकी याद में खो जाता है, लगन में मगन हो जाता है या परमात्मा की याद में मन समा जाता है। आपने कल भी सुना कि राजयोग में जो याद है वो समाने वाली याद है, हम परमात्मा की याद में खो जाते हैं, यानी इस दुनिया से हम उपराम हो जाते हैं। जैसे हम सागर में देखेंगे तो दो तरह के तैराक होते हैं, एक होते हैं जो ऊपर ऊपर लहरों पर तैरते हैं और लहरों से टकराते रहते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो गोताखोर होते हैं, वो सागर के तले में चले जाते हैं और जैसे कि वो इस दुनिया से ही अलग हो गए, उनको इस बाहर की दुनिया का भान नहीं रहता है और सागर के तले में फिर उन्हें रतन मिलते हैं, मोती मिलते हैं, वो दुनिया ही अलग है। तो ऐसे ही प्रारंभिक अवस्था में हमारा मन टकराता है क्योंकि मन में जो विचारों की लहरें उठती हैं वो कई बार सागर के समान होती हैं, मन उनसे टकराता है। लेकिन जब हम सागर के तले में चले जाते हैं यानी ईश्वर की याद में समा जाते हैं तो इस दुनिया से उपराम हो गए, दूसरी दुनिया में पहुंच गए जो ईश्वर की दुनिया है, और मन पूरी तरह से जब वहां एकाग्र है तो फिर हमें ईश्वरीय अनुभव के रतन मिलते हैं, वो अनुभूति हमें सहज होने लगती है। तो एकाग्रता और अनुभूति दोनों बिल्कुल समीप की स्थितियां हैं। एकाग्रता में जाते ही अनुभव होने लगता है, तो मानो मेरे मन में अशांति है और मैं शांति के सागर में समा जाती हूं, तो मन तुरंत शांत हो जाएगा। सागर के पास हम जाते हैं तो सागर से हमें जल मांगना नहीं पड़ता है, जल तो वहां है ही। मैं सागर के पास पहुंची और मुझे जल मिलने लग गया। तो ऐसे ही परमात्मा के पास हम पहुंचे और उस शांति के सागर से शांति मुझमें समाने लग जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है, मांगना नहीं पड़ता भगवान मुझे शांति दे दो। ऐसे ही अगर मेरा मन दुखी है और हम भगवान जो सुख का दाता है, सुख का सागर है, उसमें समा जाते हैं, उसकी याद में खो जाते हैं, तो मन अतींद्रिय सुख का अनुभव करने लगता है और दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर मन उदास है तो हम आनंद के सागर में समा जाते हैं और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। तो एकाग्रता माना एक लक्ष्य पर, जो परमात्मा हमारा लक्ष्य है उस पर बुद्धि पूरी तरह से टिक जाती है, यानी एक ही संकल्प में मन स्थित हो गया। ये विचार शून्य स्थिति नहीं है। दुनिया में कई बार दूसरे प्रकार के जो योग सिखाते हैं वो मन को शून्य करना सिखाते हैं, मन शून्य नहीं हो सकता, लेकिन एक विचार में एकाग्र अवश्य हो सकता है। जैसे वही महाभारत का एक प्रसंग आता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य सभी पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, तो एक बार वो उनकी धनुर्विद्या का परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने एक चिड़िया पेड़ पर रखी और लक्ष्य दिया कि इस चिड़िया की आंख को निशाना बनाना है। सबसे पहले युधिष्ठर को बुलाया, परीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने पूछा, युधिष्ठर तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो कहा, गुरुजी सब दिखाई देता है, पेड़ भी दिखाई देता है, शाखाएं दिखाई देती हैं, पत्ते दिखाई देते हैं, चिड़िया भी दिख रही है, उसकी आंख भी दिख रही है। उन्होंने युधिष्ठर को हटा दिया, तुम हट जाओ, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर दुर्योधन को बुलाया, तो दुर्योधन ने भी वही कहा, गुरुजी मुझे भी सब दिखाई देता है। कहा, तुम भी हट जाओ, तुम्हें भी निशाना नहीं लगा सकोगे। फिर उन्होंने भीम को बुलाया, उसने भी वही जवाब दिया। अब अर्जुन को बुलाया, तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है। तो गुरुजी ने कहा, तुम निशाना लगाओ, और उसने निशाना लगाया, वो सीधा चिड़िया की आंख पर लगा। तो मेरे मन का निशाना भी कौन है? हमारे मन का निशाना वो परमपिता है, ईश्वर है। और जब मन पूरी तरह से उस निशाने पर टिक जाता है तो फिर हमें अनुभूति होने लगती है। और ये योग की ये स्थिति आत्मा के लिए अग्नि का कार्य करती है। जैसे हम देखते हैं अग्नि का रोल क्या होता है, उसमें जो वस्तु डाली जाती है वो उस रूप में कभी भी वापस नहीं आती। अगर आग में आपने कोयला डाल दिया तो वो काला कोयला राख हो जाएगा, उसी रूप में वापस निकलेगा आग से? कभी भी नहीं निकलेगा। अगर आग में आपने कचरा डाल दिया तो वो कचरा धुआं बन जाएगा, धुआं बन के उड़ जाएगा। अगर आपने सोना डाल दिया आग के अंदर, तो वो सोने के अंदर जितनी भी मिलावट है, खाद पड़ी हुई है, वो सारी मिलावट दूर हो जाएगी और वो सोना शुद्ध हो जाएगा। अगर हमने आलू डाल दिया, आलू वैसे ठोस होता है लेकिन आग में डालते ही वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अगर हमने मिट्टी की ईंट डाल दी तो वो मुलायम होती है लेकिन आग में वो पक जाएगी, इतनी कठोर हो जाएगी कि उससे हम दीवार बनाते हैं। तो कोई भी वस्तु उसी रूप में वापस नहीं आएगी जिस रूप में डाली गई। तो यहां भी एकाग्रता में जब मन की स्थिति होती है तो फिर आत्मा का रूप परिवर्तन होने लगता है, यानी आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के अशुद्ध संस्कार हैं, वो अशुद्धियां स्वतः समाप्त होने लगती हैं, आत्मा पावन बनने लगती है और उसके संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, जो पाप कर्म इकट्ठे हैं वो भी नाश हो जाते हैं। जैसे अगर हमने सूरज की रोशनी में कोई कागज रखा हुआ है तो वो नहीं जलता है, वो कागज पड़ा रहेगा, महीनों तक पड़ा रहेगा, सालों तक पड़ा रहेगा। लेकिन एक लेंस लगाया आपने और सूरज की रोशनी को एक स्थान पर फोकस कर दिया, केंद्रित हो गई वो एक बिंदु पर, तो कुछ मिनट के अंदर ही वो कागज जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? पूरी सूरज की गर्मी एक स्थान पर केंद्रित हो गई, तो इतनी शक्ति पैदा हो गई उसके अंदर कि उसने उस कागज को भस्म कर दिया। वही सूरज की रोशनी पहले भी थी। तो ऐसे ही परमात्मा शक्तियों को जब हम अपनी आत्मा पर पूरी तरह से एकाग्र करते हैं तो उस एकाग्रता से इतनी शक्ति पैदा होती है कि आत्मा के पाप कर्म भस्म होने लगते हैं। तो ये एकाग्रता का अनुभव हम राजयोग में करते हैं कि इस स्थिति पर पहुंचने के बाद हम अपने आप को पहले जैसा महसूस नहीं करते, हम महसूस करते हैं हमारे अंदर परिवर्तन आ गया है। फिर अनुभूति की स्थिति, अनुभूति में खो गए, माना वो विचारों से हम उस अनुभूति की अवस्था तक पहुंचे। दुनिया में भी कई बार हम विचारों से ही अनुभव कर लेते हैं, जैसे आप किसी पहाड़ी स्थान पर जाते हैं और वहां पर आप किसी होटल में ठहरे हैं और वहां आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, पता चलता है कि गीजर बंद है, पानी बहुत ठंडा है, बर्फ के जैसा ठंडा है। आपने पानी खोला, हाथ भी नहीं लगाया, इतनी ठंड महसूस हुई कि बाथरूम से बाहर आ गए। तो जो आपके साथी होंगे वो कहेंगे क्या हुआ, तो बोला पानी बहुत ठंडा है, नहाया तो नहीं, लेकिन सिर्फ उस चिंतन से ही कि ये पानी ठंडा अगर शरीर पर पड़ा तो क्या स्थिति होगी, वो अनुभव करके बाहर आ गए। तो ऐसे ही हम परमात्मा के समीप जाते हैं, हम विचार करते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति के सागर हैं, वो शांति के दाता हैं। इस चिंतन से ही हम उस अनुभव में जाने लगते हैं, वो अनुभव हमें होता है। तो अभी हम जैसे आप प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करते रहे हैं, ऐसे ही अभी हम पहले एक एक्सरसाइज करेंगे उस एकाग्रता को अनुभव करने के लिए, फिर हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो एक्सरसाइज मैं आपसे कराऊंगी 2 मिनट के लिए, जिसमें हम मन बुद्धि एक साथ चलाएंगे, यानी मन विचार करेगा, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करेगी, आप बुद्धि से देखते जाएंगे और फिर अनुभव करेंगे वो हमारे संस्कार। तो सभी सीधे होके बैठेंगे, आप चलें मेरे साथ मन की यात्रा पर। मन के द्वारा हम किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। तो आप सभी जिस शहर से आए हैं अपने मन को ले जाइए उस शहर में, और अपने घर पहुंचें। देखें कि आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में आप पहुंचे, और जो भी घर के सदस्य हैं उनसे आप बातचीत करने लगे। आपको भूख लगी है, आप रसोई में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं और इस फ्रिज में कुछ फल रखे हुए हैं, आप उसमें से एक संतरा उठाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, संतरे को छीलते हैं और उसे खाते हैं। तो अभी आप पुनः वापस आ जाएंगे अपने इस शांतिवन के डायमंड हॉल में और आंखें खोलेंगे सभी। ओम शांति। तो आप में से कितने लोग अपने शहर में पहुंचे, मन से पहुंचे? अच्छा, लगभग सभी पहुंच गए। और किस किस ने संतरा खाया, अनुभव किया संतरा खाया? अच्छा, वो थोड़े कम है। और किसने संतरे का टेस्ट महसूस किया? मतलब टेस्ट महसूस किया माना मुंह में वो पानी आ गया संतरे को खाने के जैसा। तो देखिए ये भी काफी है। तो ये परफेक्ट मेडिटेशन है, यानी मन से आप गए उस स्थान पर, आपकी बुद्धि ने पूरे उस दृश्य को देखा, अंतर्चक्षु है हमारी बुद्धि, और अनुभव हो गया संतरा खाने का। ये मतलब संस्कार, मन बुद्धि संस्कार तीनों ने साथ में काम किया। अब यही विधि हम राजयोग में प्रयोग करेंगे। हम सभी अपने घर जाएंगे। अभी आप घर गए ना, तो वो घर था हमारा इस संसार का घर, लेकिन अभी हम जाएंगे आत्मा के घर। आत्मा जिस स्थान से आई है, परम धाम से आई है, तो मन के द्वारा हम परम धाम जाएंगे। और जैसे आपने मन के द्वारा अपना ये घर देखा, ऐसे ही मन के द्वारा हम परम धाम देखेंगे, जो सुनहरी लाल प्रकाश का धाम है। और फिर हम परम पिता परमात्मा से बातचीत करेंगे, जैसे आपने अपने संबंधियों से बात की। तो चलिए मन को हम उस अंतर यात्रा के लिए तैयार करते हैं। ये हमारी रूहानी यात्रा है। और कहते हैं कि हम 3-0 और 1 डायल करते हैं तो भगवान के साथ हमारी हॉटलाइन लग जाती है। 3-0 कौन सा? 1 है आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। बिंदु है माना 0 है। तो कहते हैं 1-0 लगाने से लोकल लाइन कट हो जाती है, आपका कनेक्शन नेशनल लाइन से हो जाता है। और अगर 2-0 लगाते हैं, यानी भगवान भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, मानो दुनिया में क्या होता है, 2-0 लगाया तो फिर नेशनल लाइन भी कट, इंटरनेशनल लाइन चालू हो जाती है। लेकिन शिव बाबा से कनेक्शन करना है, इस दुनिया से भी पार जाना है, तो हम एक तीसरा 0 और लगाएंगे। और वो तीसरा 0 है कि ये ड्रामा, ये जो सृष्टि चक्र है, वो भी एक बिंदु की तरह है। और फिर हम सीधा परम धाम में पहुंचते हैं और उस एक परमात्मा को याद करते हैं। तो इस विधि से अपने आप को पूरी तरह से अपने देह की स्मृति से और इस देह के जो भी संबंध हैं उनसे न्यारा कर लें, उपराम हो जाए। मन को चिंतन दें, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप मस्तक में विराजमान एक सितारे के समान हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। अपने निजी स्वभाव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। इस संसार में मैं परम धाम से आई हूं और मुझे वापस अपने उस ज्योति के देश में, शांति के देश में लौटना है जो मेरा असली घर है। अपने मन के द्वारा मैं जा रही हूँ परमधाम में, इस भौतिक जगत से बाहर। वो सुनहरी लाल प्रकाश का लोक है, देखें अपने आप को उस लोक में। मेरे परमपिता परमात्मा शिव मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, परम ज्योति हैं। मैं मन की आंख से, अंतर्चक्षु से अपने पिता को देख रही हूँ। वो शांति के सागर हैं, उनके शांति के प्रकंपन मेरे मन को शांत बना रहे हैं। वो सर्वशक्तिवान है, ईश्वरीय शक्तियां मेरे मन को शक्तिशाली बना रही हैं। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। शिक्षक के रूप में मुझे सत ज्ञान देने वाले हैं, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान ने दिया है। वो मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं, मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं, सर्व के कल्याणकारी। सतगुरु हैं, मैं भगवान से अपने दिल की कोई भी बात कह सकती हूँ। मेरी सब जिम्मेवारी चिंताएं मैं ईश्वर को समर्पित करती हूँ। सदा मेरे साथी हैं, जहां भी जिस समय मैं उन्हें याद करूं। शिव बाबा के याद के ये पल मेरे जीवन की सबसे अमूल्य क्षण हैं और मुझे परम आनंद का अनुभव कराने वाले हैं, परम सुख देने वाले हैं। मैं बहुत हल्कापन और न्यारापन अनुभव कर रही हूँ। और अब आ जाएं पुनः इस साकार लोक में, हम एक गीत सुनेंगे कैसे भगवान सर्व संबंधों से हमारे साथी हैं, और उसके पश्चात ये सत्र समाप्त होगा। तो आप सभी बैठे रहेंगे अभी।
संग संग रहते हैं वो अपने संग संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है खुलते ही आँख हमें मिलते हर पल वो साथ मेरे चलते कितना वो प्यार हमें करते उनकी पलकों में हम पलते हम खुश नसीब उनको पाकर हम खुश नसीब उनको पाते जिंदगी हमारी गाती है भगवान।